الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यन्फ़अउना व ज़िदना 'इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. सबसे पहले तो पिछले टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टेस्ट का भी करेंगे हम इंशाल्लाह बात। एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है, कुछ लोग कुछ नहीं, दो लोगों का सिर्फ ऐसा हुआ कि वो कह रहे हैं कि हमने टेस्ट सबमिट किया लेकिन उनको स्कोर नहीं मिला। तो असल में जितने भी टेस्ट हमारे पास आए, हमारे पास उनकी काउंटिंग है, और ये तो कोई मैनुअली नहीं हुआ कि किसी का स्किप हो जाए, ये तो जाहिर है कंप्यूटर से पूरा सिस्टम ही हुआ है। या तो आपने सबमिट करने में कुछ गलती की है, या ये हो सकता है कि आपने टाइम के बाद किया है टेस्ट, तो इसलिए वो हम तक नहीं पहुंचा। याद रखिए सब स्टूडेंट्स के, चाहे आप हदीस क्लास लाइव नहीं भी ले रहे हैं किसी वजह से, लेकिन टेस्ट आपको उसी वक्त देना होगा। टेस्ट के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बाद में दे सकते हैं, ठीक है। अनलेस मैंने किसी से जो बात की भी है प्रिंट आउट लेने की, वो प्रिंट लेके और उसके बाद वो उसको करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा किसी के पास भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो शाम में रात में जॉब पे हैं, चाहे जॉब पे हैं, आप अपना इतना सा टाइम निकाल सकते हैं, 10-15-20 मिनट का ये लंच टाइम ले सकते हैं और उसके अंदर आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके बगैर हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपको टेस्ट के लिए अलग से टाइम दें। जब तक जितना टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर आप करेंगे तो हमें टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप उसके बाद बार बार भेज रहे हैं, चाहे वहाँ पे टेस्ट लगा हुआ है, अगर आपने हमें भेजा तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। वो टाइम देने का कोई मकसद है ना आप लोगों को, तो अगर आप उसके अंदर देते ही नहीं है तो फिर देखें दूसरे लोगों के साथ ये नाइंसाफी है जो टाइम के अंदर टेस्ट दे रहे हैं। आप सबके टेस्ट से मैं गो थ्रू किया, मैंने एक एक बंदे के देखे हैं कि उन्होंने क्या आंसर्स लिखे हैं अपने क्वेश्चंस के, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी आए हैं, तो उससे मुझे आप लोगों की गलतियां भी मालूम हुई हैं। कुछ बाज़ चीज़ों के ऊपर तो मुझे अफसोस भी हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने रिव्यू में भी करवाए थे, तो मुझे नहीं समझ आई कि क्यों फिर भी गलती हुई है, होनी तो नहीं चाहिए थी इस तरह के। उसमें तो आप लोगों को मेरे ख्याल में इतनी दफा रिव्यू हो चुका था कि कोई वजह नहीं मुझे समझ आती कि इतनी ऑब्वियस मिस्टेक्स कैसे कर दी आपने। तो ये कुछ जैसे पहला सवाल जो था वो भी मैंने रिव्यू सेशन में भी करवाया था, बल्कि पहला पेज ही आप खोलें तो आपको ईमान और इस्लाम और एहसान के दरमियान जो डिफरेंस है वो सामने पता चलता है, अगर एक दफ़ा भी आपने पढ़ा हो सही तरह से। तो फिर भी कोई अगर इसमें गलतियां की हैं तो वो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं मैं उनके नाम अनाउंस करूंगी, जिनके 90% से अबव हैं मार्क्स, और मुझे बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्ला, मरियम अथर ने 100% मार्क्स लिए, लेकिन वो सिर्फ अकेली क्लास में हैं जिनके 100% मार्क्स आए हैं, उनके अलावा किसी के भी 100% मार्क्स नहीं आए। तो हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इससे ज़्यादा लोगों के आने चाहिए थे, क्योंकि टेस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो फिर क्या वजह हुई है तो आप लोग ही जानते होंगे कि क्यों आप लोग कन्फ्यूज हो गए या और क्या मसला ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्क्स कम आए हैं। कुछ लोगों से मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन उनके भी मार्क्स जो मुझे देख के मायूसी हुई कि क्यों कम हुए। सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स अफसर फातिमा के हैं, शाबाश माशाल्लाह, उनके 96% से अबव मार्क्स हैं उनके भी माशाल्लाह। एक सिर्फ उनका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो जिसकी वजह से वो एक मतलब पीछे रह गई थोड़ी सी। उनसे आप लोगों को शायद परसेंटेजेस मिली है या नहीं, मगर अच्छा ठीक है, जिनकी परसेंटेजेस आई हैं आप लोगों को अगर उसमें पता चल गया होगा कि कितने आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। अच्छा, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स जाहिदा बहजाद के हैं, माशाल्लाह, इनका दो रॉन्ग हुए हैं सिर्फ, तो 93% मार्क्स हैं। और बाकी वो लोग जिनके 90% या 90% से अबव, 90 से अबव, इनमें राबिया हैं, आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा कि आपका पूरा नाम क्या है, इनके सभी मैं मिक्स ही बोलूंगी। अच्छा, राबिया भी ज़ायदा बेजात के साथ ही हैं माशाल्लाह, राबिया ने भी 93% ही मार्क्स लिए, इनके भी दो ही क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। जिन लोगों के 90 से अबव मार्क्स आए हैं या 90% हैं उनके मैं बस अब नाम बता देती हूँ आप लोगों को। का तो हो गया शबनम खान, माशाल्लाह 90% शबनम खान ने लिए हैं। अच्छा, एक सिस्टर ने कहा है कि उनका नाम ना बोला जाए, चलिए मैं उनके रिस्पेक्ट करते हुए उनका नाम नहीं बोलती, उनके भी माशाल्लाह 90% से अबव है। नाजमीन सुलेमान, इनके भी माशाल्लाह 90% से अबव है। सबाहत हाशमी 90%, और अमरीन डार माशाल्लाह 90%। तो इन्हीं लोगों के हैं जो 90% या 90% से अबव हैं। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हो सकता है आप लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग लगे हों। एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है जो सब ने सही किया है, अच्छी बात है, आपसे मुतालिक भी है, तो सब ने सही किया, किसी एक बंदे का भी वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, और वो है कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा कौन होंगे, तो उसका सब ने जवाब सही लिखा है कि औरतें होंगी। तो चलिए, इतना तो आपको सबको पता है कि कौन होगा जहन्नुम में सबसे ज्यादा, तो नहीं सबसे ज्यादा, फिर इसका मतलब इससे बचने की और डरने की और अपना इंतजाम करने की जरूरत है। तो मैंने कहा चलो, खवातीन है, खवातीन को इतना अंदाजा है, इसमें किसी ने गलती नहीं की, बाकी में कई सिली मिस्टेक्स भी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आप टेस्ट अच्छा करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट का भी जी सबके लिए तकबीर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, मैं कहती हूँ ये भी बहुत एक बड़ी बात है। देखिए, ये आज मैं ये सोच रही थी कि लास्ट ईयर नवंबर में, एक साल पहले अपना सोचें, इस वक्त में आपको कोई पता था कि कोई सही हदीस होती है, कोई मौजू हदीस होती है, कोई किताबुल ईमान भी कोई चीज़ है, कोई मरफू हदीस क्या है, हदीस कुदसी क्या है, ये क्या है, कोई पता था आपको? एक साल के बाद अगर आप इतना कुछ भी जान गए हैं ना, तो बहुत एक बड़ी बात है। तो इसको इसलिए फेलियर नहीं समझें, या इसको वो चीज़ नहीं समझें कि मुझे नहीं आता या नहीं, बहुत कुछ आपने सीखा। इस चीज़ पे तवज्जो दें, आपने सीखा क्या, इस चीज़ पे नहीं कि नंबर मेरे कितने आए। तो देखें, अल्लाह ताला ने आपको इतना इल्म दिया है ना, इसके ऊपर आज शुक्र अदा करिएगा, क्योंकि ख़ास तौर पे किताबुल ईमान भी जाहिर है इतना कुछ माशाल्लाह आपने वहाँ पे सीखा, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो अब का हमारा टेस्ट आ रहा है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में टर्मिनोलॉजीज भी नहीं आपको पता थी कि ऐसी भी कोई टर्म्स होती हैं, क्या ख्याल है? ये तो बिल्कुल एक नई चीज़ आप लोगों के लिए है। तो इतना कुछ अहाद और मुतवातिर और मशहूर और गरीब और अजीज और ये सब कहाँ पता थी, और मेरे ख्याल में दूर दूर से भी इनसे कोई गुजर नहीं हुआ था आपका, और कहाँ आज इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो सुभान अल्लाह, इस चीज को सामने रख के फिर आप देखें कि आपने कितना सफर तय किया, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूंगी कहाँ कहाँ से टेस्ट आएगा। देखिए ये टेस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस तक होंगे, हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो, लेकिन जो बात इसमें बहुत जरूरी है वो ये है कि आपको इतनी कमांड होनी चाहिए हदीस के नाम पे कि ये ना हो कि मकबूल हदीस आए तो आप सोचें कौन सी थी वो हदीस, क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं होगा कि आप बहुत लंबा चौड़ा सोचने बैठ जाए। आपको फौरन क्लिक करना चाहिए मकबूल हदीस क्या है, इसकी किस्में हैं, अहाद कौन सी है, उसकी क्या किस्में हैं, मुतवातिर क्या है, ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब इसमें लंबा लंबा सोचने वाला मौका नहीं मिलेगा। मसलन तीन ऑप्शंस वहां पे दिए हैं, अगर आप तीन ऑप्शन मिसाल के तौर पे ये मौकूफ हदीस है या मरफू हदीस है या ये हदीस कुदसी है फॉर एग्जाम्पल एक में दे रहे, तो अब अगर आप सोचने बैठे ना मरफू कौन सी थी, वो एक पढ़ा तो था मरफू वो क्या थी, तो और फिर मौकूफ देखी, फिर आपने तीसरी देखी मकबूली की थी, तीनों एक जैसे ही नाम लग रहे हैं, अब मैं जी इसमें कंफ्यूज हो गई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है उनके आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मरफू कौन, क्योंकि सिमिलर है ना नाम एक जैसे लगते हैं ना, तो उसके अंदर ही ना वो गड़बड़ हो जाए आपका, बिल्कुल अलग अलग आपको पहचान होनी चाहिए। ख्याल में ये टेस्ट देने के बाद अगर आपने अच्छी तैयारी की ना ये टेस्ट देने के बाद, आप माशाल्लाह मतलब असूल हदीस में तो माशाल्लाह आप लोग काफी लोगों से आगे होंगे, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करिएगा। ये बात की बातें नंबर को छोड़े अभी, अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है। ठीक है अच्छा, और दूसरी बात ये जो जैसे अब ये तैयारी करनी, जो पहला आपको प्रिंट आउट दिया गया था जरूरी इस्तलाहात का, ठीक है पेज नंबर 1, 2 एंड 3 ये सब आपने करने हैं, 4 सब करने हैं। बस सिर्फ इनमें ये इतना मैं कर सकती हूँ आपके साथ कि ये जो दो किताबें छोड़ के बुखारी और मुस्लिम छोड़ के ये जो चार बाकी किताबें हैं इनके जो लिखने वाले हैं उनके पूरे पूरे नाम आपको नहीं याद करने की जरूरत, ना उनकी अहदीस की तादाद याद करने की जरूरत है, ना ये कि वो कौन सी हिजरी में पैदा हुए थे। ठीक है हाँ, मगर इतना आप जरूर करें कि जैसे बुखारी है अब इतना आपको पता होना चाहिए उनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है, मुस्लिम है उनका नाम क्या है मुस्लिम बिन अल हज्जाज, अबुल हसन नहीं अबुल हसन तो उनकी कुनियत है ना, ठीक है अबू दाऊद है सुलेमान बिन अल अशअस ये उनका नाम है, तिरमिजी है मोहम्मद बिन ईसा, नसाई है अहमद बिन शुआइब, इब्न माजा है मोहम्मद बिन यजीद, बस इतना इतना काफी है, बाकी इतना लंबा अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुर्रहमान अबू ईसा ये सब चीज नहीं आपको याद करने की जरूरत, ना ही हिजरीज याद करने की जरूरत है, ना ये आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है और बाकी बुखारी और मुस्लिम की भी आपको एज सच कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करने की जरूरत, कितनी तादाद है कितनी हजफ कर देके कितनी बनेगी कितनी, अगर आपको रफ आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा सित्ता आगे जाहिर आपको ये आनी चाहिए, ये जामे सुनन सहा मुसनद मौजम जमाजा इनमें से एक क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है तो ये देखिए मैं आपको इतना बता भी रही हूँ, इस दफा सबका बहुत अच्छा टेस्ट होना चाहिए, मुझे ज्यादा लोग ऐसे चाहिए जिनके 100% मार्क्स आए। ठीक है ना मैं इसलिए आपकी हेल्प के लिए आपको काफी बता रही। अच्छा ये भी पीछे जैसे बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपके साथ रिव्यू भी करूंगी, आपको ये बस पता होना चाहिए कि थोड़ा सा रिव्यू अभी आपके साथ करती हूँ तो फिर आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा अंदाजा और हो जाएगा। अच्छा फिर आए दूसरा जो प्रिंट आउट है वो मेरे ख्याल में ये है हदीस की अकसाम हम तक पहुंचने के एतबार से, राइट तो ये तो जाहिर है ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब मशहूर मौकूफ मरफू इनके अंदर ही आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है आपको अच्छे तरीके से ये सारी आनी चाहिए। फिर कुव्वत और ज़ौफ के एतबार से हदीस अहाद की तकसीम ये भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है अच्छा ये फिर आगे ये तो ज़ईफ वगैरह सारी हो गई ना, इसमें ज़ईफ हदीस भी आ गई इसमें, वो मरदूद सब चीज आ गई। उसके बाद किताब की तरफ आई है, किताब की तरफ आएं, किताब में पेज नंबर 31 निकालें, पेज नंबर 31 एंड 32, ये दो पेजेस आपको लाजिम है करने, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा कोई भी नहीं टेस्ट में बताता जितना मैं आपको बता रही हूँ। अब इससे पहले आपको करने की जरूरत नहीं है ये जो सारा मुकदमा, ये नहीं करने की जरूरत, मगर यहां से आपको 31 और 32 पेजेस आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। और आगे पेज 33 जो है, जो जिसमें हदीस आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ की सख्त मुजम्मत का बयान, ये जो हदीस वाली शुरू थी, ये नहीं आएंगी, क्योंकि ये हम किताबुल ईमान के साथ ही तमाम अहदीस कवर कर लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। इसमें जो एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया ज़ादुल मुस्लिम का, तो मैंने यहाँ पे देखा है आप बुक खोल के, कि ये ज़ादुल मुस्लिम की यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कोई ऐसी किताब नहीं जानता जिसमें इसके मुअल्लिफ ने मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस को जमा किया हो मा सिवाय ज़ादुल मुस्लिम के, फी मुत्तफ़क़ुन अलैह अल-बुखारी वल मुस्लिम। इसका मतलब है ये भी एक किताब है, किताब का नाम है कि जिसमें बुखारी और मुस्लिम दोनों से अहादीस ली गई हैं, ये उस किताब का नाम है ज़ादुल मुस्लिम। 31, 32 आप लोग अपनी बुक में देखें जहां पे ये लिखा हुआ ना सारा अहादीस और आयतें वगैरह सब जो पिछली हैं वो सारी छोड़ के, उसमें सही से स्टार्ट हो रहा है मुकदमा अज मुरत्तब, यहां से, ठीक है, मुकदमा में जो लास्ट पेज है ना, जो लास्ट टू पेजेस हैं वो देखें आप, जो सही से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़ादुल मुस्लिम जो है ये किताब का नाम है, ये भी लुलू अल मरजान की तरह ही किताब है जिसमें मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस है बुखारी और मुस्लिम की, ये किसी और ने लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अहादीस नहीं है, कम अहादीस है, और खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में इस किताब में है, क्योंकि लिखा हुआ है ना शुमार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा, फिर आगे देखें इसमें मरफू और इस हदीस के बारे में भी कुछ बताया गया, तो हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया भी थोड़ा सा हो जाए किस तरह से होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलें जी, आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ या फिर आप लोगों को एक एक, अच्छा जी, जिन आप लोग क्या चाहते हैं वहीं पे इंशाल्लाह फोन पे ही फिर मेरे ख्याल में पूछ लिया जाए जी, जिन लोगों का टेस्ट नहीं आया वो उनको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, उनको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। अब वो टेस्ट तो वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है आपने जब तक हमें बताया उस वक्त तक तो आप बुक खोल के देख चुके होंगे, अभी तक तो नहीं हो सकता ना फिर इस तरह। यहाँ पे पेंट ऑफ में जरा आप लोग देर लगाते हैं जवाब देने में, अच्छा चले ठीक है, फिर पेंट ऑफ पे इंशाल्लाह ताला पूछ लेती हूँ। सबसे पहले आप अपना चाहे तो कोई, अगर आपने खोलने हैं खोलने, बेहतर है कि आप इसके बगैर ही खोले, बगैर ही जवाब दें ताकि आपको पता हो कि आपको कितनी आपकी तैयारी हुई है। अच्छा, मुझे हदीस के बारे में बताएंगे आपके, हदीस क्या होती है, हदीस में कौन कौन सी चीजें आती हैं जी। आपका टेस्ट हमें नहीं मिला है, आपका और नरगिस नाही दो लोगों का टेस्ट हमें नहीं मिला। कॉल फेल तकरीर जी, अमल, अमल वही हो गया ना, फेल को ही तो अमल कहते हैं ना, फेल को ही अमल कहते हैं, तो कॉल फेल तकरीर, ठीक है, सिफत भी, तो यानी तकरीर का आपको डेफिनेशन समझ है कि वो काम जो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया और आपने देख के मतलब उसको एंडोर्स किया हो या उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, तो खामोशी भी एक रजामंदी होती है, तो इसलिए वो भी हदीस ही कहलाती है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें यहाँ पे भी आ जाते हैं, ये पेज नंबर 31 में ना इसी बारे में नीचे है लिखा हुआ, तो सहाबा कराम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कोई सहाबी के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने ये काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को देखा, आपके सामने हुआ, आपके जमाने में हुआ, तो वो कौन सी हदीस होगी, मरफू होगी, मौकूफ होगी? जी वो मरफू हदीस होगी। वजह इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई, आपके जमाने में हुई। अगर वो कहे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने ऐसा किया, तो फिर वो कौन सी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने ऐसा किया, फिर मौकूफ होगी। ठीक है, कि यानी अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात नहीं कर रहे, आपके सामने होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाद की बात कर रहे, तो तब वो मौकूफ होगी, अदरवाइज मरफू हदीस होगी। ठीक है, और अगर सुन्नत के बारे में, किसी सुन्नत के बारे में कोई सहाबी बताए कि फलां सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने देखी, तो वो कौन सी होगी, वो भी मरफू होगी। ठीक है, अच्छा असर क्या होता है? असर, असर सब लोग पैल्ट ऑफ पे आ जाए, यहीं पे लिखे हैं आप लोग, फोन पे नहीं होगा जी। सहाबा का कॉल ताबेईन का भी हो सकता है, उनके कॉल को भी असर कहते हैं। अच्छा जी, सुन्नत क्या है? सुन्नत दीन में जारी अमल, ठीक है, ठीक है, और इसके बारे में क्या हुक्म है, सुन्नत के बारे में क्या हुक्म है? सुन्नत यानी करने वाले को सवाब और ना करने वाले को सजा जी। अच्छा जी, सनद, सनद क्या चीज होती है? सनद चेन है, और मतन, मतन टेक्स्ट है जी, हदीस का टेक्स्ट जी, वो उसको मतन कहेंगे जी। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हदीस के अंदर कौन सी चीज मतन है और कौन सी चीज सनद है। अगर आपके सामने एक हदीस दे दी जाए और उसमें कह दिया जाए कि ये हिस्सा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसको सनद कहते हैं या इसको मतन कहते हैं। ठीक है, मुत्तफ़क़ुन अलैह क्या, कौन सी रिवायात को कहते हैं? बुक बंद है ना आप लोगों की, बुक्स और नोट्स, वरना देख देख के लिखना है तो उसका कोई फायदा वैसे नहीं है। वो लोग ना लिखें जिन्होंने, जो खोल के बैठे हैं जी। अब आप लोगों ने जो आंसर दिया ये इनकम्प्लीट है जी। बुखारी और मुस्लिम बहुत रिवायत करें, किससे ने, दोनों ने एक ही सहाबी से रिवायत किया, सहाबी एक होना जरूरी है। ठीक है जी, अगर एक सहाबी से नहीं है तो फिर वो मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है, हदीस चाहे सेम ही हो सकती है। अच्छा जी, हदीस के शाने नज़ूल को क्या कहते हैं? जी शाने वरूद, शाबाश, अभी तक तो आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसराइली रिवायात कौन सी होती है? वरूद, हाँ जी, इसराइली रिवायात जी, जो बनी इसराइल की बुक्स में है। अच्छा, वहां से हमारे पास आ गई, ठीक है, उनकी, उनके उलूम में से है, जो बनी इसराइल के मजहबी किताबों से हमारी किताबों में आ गई हैं जी जी, ठीक है, उनकी किताबों से आई हैं हमारी किताबों में। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इनको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्या करना चाहिए जी? सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ना गलत करेंगे ना सही। अच्छा जी, जो छह किताबें हैं इनके नाम आपको मालूम है ना? इनके नाम आपको मालूम है, जो छह किताबें, सबको इनके नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, बुखारी को किसने लिखा है? बुखारी के का असल नाम क्या है? नहीं, इमाम बुखारी नहीं है उनका नाम जी, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल, किसी से याद रख लेना, किसी का नाम आपकी फैमिली में मोहम्मद हो, किसी का नाम इस्माइल हो, तो इस तरह से याद रख लें मोहम्मद बिन इस्माइल, ठीक है। क्योंकि ये कोई इतने ऐसा मुश्किल नाम नहीं है कि जो आप लोगों को आए नहीं। अच्छा, मुस्लिम का नाम क्या है? जी, मुस्लिम का असल नाम भी वही है जी, मुस्लिम बिन अल-हज्जाज। हज्जाज के नाम से याद रखें ना, और मुस्लिम का अपना नाम वही मुस्लिम ही है, ठीक है। चलिए, इन दोनों के नाम आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए क्योंकि इनकी किताब ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी किताबों के नाम भी आपको मालूम है, पूरी 6 किताबों के नाम। ये कौन सी किताबें हैं? इन किताबों में हम इतना क्यों मानते हैं? सहासित्ता है, तो इनमें क्या है, इनमें क्या ऐसी बात है? ऑथेंटिक अहदीस, क्या इनमें कभी कोई ज़ईफ हदीस नहीं हो सकती? क्या इनमें कोई ज़ईफ हदीस नहीं हो सकती? हाँ जी, हो सकती है जो दूसरों के नजदीक ज़ईफ हो। ये देखें, आप अगले पेज पे देखें, पेज 4 पे, सहा वो है इसका मुफरद, सही है इससे मुराद हदीस की वो किताबें जिनके लिखने वाले ने ये लाजिम किया कि वो सिर्फ सही हदीस ही को लिखेगा और किसी ज़ईफ हदीस को नहीं दर्ज करेगा। लेकिन मुहदिसीन का हदीस की तहकीक में मयार मुख्तलिफ हो सकता है, अपने एतबार से वो सही दर्ज करेंगे लेकिन इनमें बहुत सी अहादीस दूसरे मुहदिसीन के नजदीक ज़ईफ हैं, ठीक है। दूसरे मुहदिस के नजदीक वो ज़ईफ हो सकती है, वो अपने तौर पे उन्होंने यही कहा कि हमारी जितनी तहकीक है तो ये सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि हदीस की दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किस बंदे का होता है, उसको उसका नाम क्या होता है जिसका सबसे बड़ा दर्जा होता है, जिसको सबसे ज्यादा हदीस का इल्म होता है? हाकिम। जी बिल्कुल, हाकिम नाम से ही आपको पता चल जाता है ना कि वो सबसे बड़ा हो गया। और मुहद्दिस कौन होता है फिर? जो हदीस बयान करने वाला होता है जी, कहने वाला, लेकिन उसको उसकी समझ भी हो, ये नहीं कि ऐसे ही बस, उसकी समझ भी होनी चाहिए हदीस की जो वो बयान कर रहा है, ठीक है। और उसको रावी के जो हालात हैं वो भी पता होने चाहिए। अच्छा जी, जामे किन किताबों को कहते हैं? जामे, जिनमें कुछ खास मजामीन मौजूद हो ना। अब एक दो भी आपको पता है तो ठीक है, सो के सारे नहीं याद करने की जरूरत। मसलन है एकामात हो, तफसीर हो, फितन के बारे में हो, आदाब हो, जैसे इस किस्म के मजामीन, ठीक है। और सुनन कौन सी है जिसमें सिर्फ एकाम हो? जी, और फिक्र ही अबवाब हो। अच्छा, इसी तरह मुस्नद कौन सी है? ये मसनद नहीं है, मुस्नद है, ठीक है, जिसमें सहाबा के जी नामों से अल्फाबेटिकली जैसे उनको ऑर्गेनाइज किया गया, उन बुक्स को कंपाइल ऐसे किया हुआ सहाबा के नामों से। मौजम कौन सी है? उन्होंने जो लिखने वाला है उसने अपने उस्ताद के नाम से कंपाइल किया, उस्ताद के, वो बहुत सारे उस्तादों से तालीम लेते थे ना, तो अपने उस्तादों के नामों की जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें पूरी बुक को यानी कंपाइल किया, ये कंपाइलेशन का एक तरीका। अच्छा, अरबाइन कौन सी होती हैं? अरबाइन, अरबाउन, अरबानियात, 40 अहादीस, क्या कोई खास बुक है या फिर कोई भी अगर 40 अहादीस इकट्ठी की हो तो उनको अरबाइन कह सकते हैं? कोई भी हो सकती है, शाबाश, किसी भी तरह की 40 अहादीस अगर जमा की हो, जरूरी नहीं इमाम नबवी वाली जो किताब है वो ही अरबाइन है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे बताएंगे मुतवातिर कौन सी हदीस होती है? मुतवातिर, हाँ ठीक है, यानी मोस्ट ऑथेंटिक, ठीक है बिल्कुल मोस्ट ऑथेंटिक, जो बहुत सारे सहाबा, कम से कम कितने होंगे उसमें, कम से कम बहुत सारे तो हैं जी, 10 एंड अबव, ठीक है नॉट लेस देन 10, तो फिर वो मुतवातिर होगी। और मोर तो कुछ भी हो सकता है ना, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 40, 50, 60, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और शर्त, शर्त क्या है इसमें, ये तो बड़ी तादाद होगी, दूसरी शर्त क्या है, उनका चेन तो है वो है, लेकिन उनका एक बात पे, एक झूठ पे सबका इत्तेफाक करना पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो झूठ पे इत्तेफाक करें, ठीक है। अच्छा और क्या, तो ये सबसे ऑथेंटिक है, हमें पता होना चाहिए कि सबसे ऑथेंटिक किस सूरत में वो सबसे ऑथेंटिक बनती है। हाँ जी, चेन तो कनेक्टेड है ही, क्योंकि हर एक तबका जो है ना, हर एक जो लिंक है उसमें मोर देन 10 है, लेस नहीं हो सकते। और ये एक जगह पे नहीं है, ये जो हमने अभी कहा है ना, हदीस बयान करने वाली बहुत बड़ी जमात हो, बहुत सारे सहाबा, सिर्फ सहाबा में नहीं, आगे ताबईन, आगे तबा ताबईन, आगे तक जहां तक मुहदिस को ये रिवायत पहुंची है, उस वक्त तक जितने लिंक्स थे, सब लिंक्स में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद हो, ठीक है जी, ऑल तबका, बिल्कुल सब तबकात में। और क्या है कि खुद उन्होंने देखा हो, या वो कहें कि मैंने खुद सुना है, ये नहीं कि मैंने किसी से सुना था, जैसे हम तो सुनी सुनाई बातें कर देते हैं ना, मैंने एक जगह ये हदीस सुनी, मैंने एक जगह ये सुना, तो वो हमें पता होता नहीं, ऐसे ही आगे आगे करते रहते हैं। लेकिन वो ये कहें कि मैंने ये खुद सुना है, खुद देखा है, तब है मुतवातिर। तो अहाद का दर्जा बड़ा हो गया या मुतवातिर का, मुतवातिर का बड़ा हुआ, हाँ शाबाश मुतवातिर का। अच्छा मुतवातिर भी लफ्जी भी है और मानवी भी है, दोनों में फर्क क्या है, लफ्जी और मानवी, लफ्जी सेम वर्ड्स, यानी क्या मतलब सेम जी, एक ही बात, हर सहाबी ने सेम वर्ड्स यूज किए, बिल्कुल हर सहाबी ने सेम वर्ड्स यूज किए। और मुतवातिर मानवी में क्या है, मीनिंग सेम है, शाबा मीनिंग सेम है, मगर हो सकता है कि वर्ड्स की डिफरेंट हो। अब देखें एक ही बात मैं कहूं, आप कहें, बात वही है, लेकिन उसके अंदर जो हमने वर्ड्स की सिलेक्शन की है वो डिफरेंट हो सकती है। और बात कहना मुराद वही है कि मैसे मैंने कहीं जाना है, तो अब मैं कहूँ कि मैं जा रही हूँ, वो कह रही है कि मैं पहुंच जाऊंगी वहां, तो अब बात वही कर रहे हैं हम दोनों, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं मुतवातिर मानवी। मुतवातिर मानवी ज्यादा सही है या मुतवातिर लफ्जी, क्या दोनों सही है जी? बहुत बहुत फाइन, ठीक है लेकिन आया, आपने क्या मैसेज दिया, नॉट अंडरस्टैंड बट स्टिल cannot all these and also cannot understand. अच्छा चलिए, आप 100% मान लीजिएगा, आप 50% ले लें, 50% तो आ ही रहा है ना आपको, ठीक है। अच्छा मुतवातिर का हुक्म क्या है, मानना है इसको, बिल्कुल इसको ले लेना है, इसमें कोई शक है ही नहीं है, ठीक है नहीं, दलील और हुज्जत, हाँ दलील और हुज्जत लेंगे इससे, बिल्कुल इसकी कोई यानी तहकीक नहीं करेंगे आप, जब आपको पता चल गया ये मुतवातिर है तो फिर। अच्छा इसकी कोई मिसाल देंगे मुतवातिर की, किसी मुतवातिर हदीस की मिसाल देंगे आप, जी कुरान पाक इटसेल्फ, तफसीर नहीं, कुरानी पाक इटसेल्फ हम तक किस तरह पहुंचा है? रिश्ते ने आके तो नहीं आपको बताया ना? किस तरह पहुंचा? हर चीन में इतने ज्यादा सहाबा हैं कि ये हमें तवातुर से पहुंचा है, ठीक है? अच्छा जी, अहाद की जो अकसाम है, सबसे पहले तो ये बताएं अहाद होगी कौन सी? अहाद होगी कौन सी हदीस को हम अहाद कहेंगे जो मुतवातिर के लेवल पे ना हो? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये है कि इसका रूल क्या है, क्या इसका हुक्म क्या होगा, क्या इसको लेंगे नहीं लेंगे, क्या है इसकी ऑथेंटिक है या नहीं? तहकीक करना जरूरी है जी, बिल्कुल तहकीक करेंगे आप इसको और जरा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो क्या ये अहाद सही हदीस होती है या ज़ईफ हदीस होती है? हाँ जी, बहुत हो सकती है, इसमें वो कोई नहीं है, कोई इसके ऊपर ये नहीं है कि हाद आ गया तो हमने छोड़ देना, क्योंकि इसलिए कि बुखारी में भी अहादीस हैं जो अहाद भी है, मुतवातिर भी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारी मुतवातिर ही, क्योंकि अहाद में भी तो देखिए ना सही हदीस वगैरह वो तो अहाद में ही आ जाती है, सही। अच्छा, अब रावी के लिहाज से, रावियों के लिहाज से अहाद की कितनी अकसाम है? माशाल्लाह, आप तो जितने फटाफट जवाब दे रहे हैं मुझे तो लगता है सब 100% वाले ही बैठे हुए हैं। अब इसी तरह उसमें भी इंशाल्लाह जवाब दीजिएगा जी। यास्मीन इकबाल, आपने कहा था कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, आपके माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर आए, और आपने मुझे उस दिन परेशान कर दिया कि पता नहीं कितने आपके कम नंबर आ गए, 80% बहुत अच्छे नंबर होते हैं जी। इसकी मशहूर, अजीज और गरीब, अब इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए मशहूर कि उसके हर तबके में कितने लोग होंगे, अजीज में कितने होंगे और गरीब में कितने होंगे, सबको पता है ना जी? 3-2-1 का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो यानी लीस्ट कितने होंगे, लीस्ट का मतलब यह है कि 3 से कम ना जाए, मशहूर में ना 3 से कम ना जाए, अजीज में 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से स्टार्ट हो, 2 एंड अबव, 3 एंड अबव मशहूर में, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ 3-2 नहीं, लेस देन 2, मोर देन 2, इक्वल टू 2, क्या है, है ना? सो वन सही है। अच्छा जी, कुव्वत और ज़ौफ के एतबार से कौन सी अकसाम है इसकी? ये कुव्वत और ज़ौफ के एतबार से हम किसकी अकसाम देख रहे हैं बाय द वे? अहाद की, ठीक है, अहाद की अकसाम देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें मकबूल और मर्दूद, ठीक है। अब मकबूल की अकसाम हम देखेंगे, उसके बाद मर्दूद की अकसाम देखेंगे, बस इतना सा तो यहां तक है। अब मकबूल की अकसाम है वो आपको सबको, अब तो मेरे ख्याल इतना हो चुका है ना इसके ऊपर भी, मकबूल होती कौन सी है? मकबूल किस से लफ्ज? मकबूल किस से? कबूल से, हाँ, तो उसको कबूल करेंगे, तो इसका मतलब इसके नीचे जितनी भी हैं अकसाम जो आप लिख रहे हैं वो सबको आप कबूल करेंगे ना, क्योंकि वो है ही इसकी अकसाम, यही समझ आ गई ना बात, ठीक है? ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि मकबूल की आप जब किस्मों में जाते हैं तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए, मकबूल के अंडर जितनी भी आ रही है वो सब मकबूल ही तो है, इसीलिए तो मकबूल की ही टाइप्स हैं, सही है? अच्छा, अब मकबूल की टाइप्स में आपने 4 लिखा, ठीक है, उनके नाम नहीं लिखने की जरूरत, लंबे लंबे नाम है आप लोगों को, बस मुझे पता है कि आपको आते हैं, उन चारों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी है? शाबाश, ठीक है, आपने नाम भी लिख दिया जी, सही लिजाती ही, सही लिजाती ही, और उसके बाद कौन सी? नहीं, हसन ली जाती ही, कैसे हसन ली जाती ही को और ऑथेंटिक बनाती है सही ली गैरी ही, ठीक है, सही में वैरी ही है, याद रखें सही वाली हमेशा टॉप पे होगी, चाहे वो जाती ही है चाहे वो वैरी ही है। क्या हसन उससे नीचे का दर्जा आता है, ठीक है ना। अब हसन वाली में तो एक रावी की मेमोरी कमजोर थी, उसको मजीद ऑथेंटिक किसने बनाया, सही ले गैरी ही ने, ठीक है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक सवाल भी था, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूँ। ये सवाल क्या था, ये शाज के बारे में एक सवाल आया था कि शाज कुछ इस तरह से, मुझे अब कुछ सवाल लिखते हैं शायद। नो, नॉट जाती ही नहीं, आपने देखना सही। आपको मैंने बताया ना कि कई जगहों पे आपको ये भी नहीं लिखा होगा कि ले जाती ही है कि ले गैरी ही है, बस ये लिखा होगा ये सही हदीस है, ये हसन हदीस है। तो अब आपने वो आगे की तो बात की बात है, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए सही ज्यादा सही होती है या हसन ज्यादा सही है, क्या दोनों में से किसका दर्जा ज्यादा ऊंचा है, तो वो आप कहेंगे सही का, ठीक है। अच्छा अभी मुझे ना सवाल किसी ने भेजा था, मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे मैंने सवाल को नोट डाउन किया। हाँ जी जी जी, जज़ाकअल्लाह खैरन। कि शाज हदीस क्या है, शाज हदीस के बारे में, कि शाज हदीस आप लोग बताइए कि शाज हदीस के बारे में आप क्या कहते हैं, कि शाज हदीस कैसी होती है, क्या वो क्या, पहले तो ये बताएं होती क्या है शाज हदीस। क्या होती है शाज हदीस, किसी हदीस के अंदर हम कहेंगे इस हदीस में शुजूज है, तो उसका माना क्या होगा। When big ravi comes and says छोटे की बात, तो छोटे की बात है जी। अच्छा देखिए इसमें बात ये है कि शाज हदीस में दोनों, मतलब एक कह सकते हैं कि सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो है ना ज्यादा सिक्का, सिक्का का मतलब होता है कि बड़ा, बड़ा से मतलब ये कि वो ज्यादा आदिल हो सकता है, ज्यादा जाबित हो सकता है, ज्यादा उसका इल्म हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे आप इस तरह से याद कर लेंगे ना आसानी होगी, टीचर स्टूडेंट समझ लें, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और एक टीचर है, दोनों के इल्म में फर्क होगा ना जी। तो अब स्टूडेंट एक बात कह रहा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन जब टीचर आके उससे डिफरेंट बात कहता है तो किसकी बात ली जाएगी, किसकी बात लेंगे, टीचर की बात ले लेंगे ना। तो इस तरह ही यहां पे भी क्या है, जो शाज हदीस होती ना वो है कि एक, अब हम छोटा बड़ा कह देते हैं, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए, कि ये स्टूडेंट है वो लेकर, वो एक बात कह रहे हैं, उसके बाद टीचर आ गए यानी उनसे ज्यादा सिका रावी आ गए, तो उन्होंने कोई और बात की जो कंट्रोडिक्ट कर रही थी इस बात को, तो अब हम क्या कहेंगे, जो जो छोटे की बात है ना, जो स्टूडेंट की बात है, ये शाज हो गई, ठीक है, ये शाज हो गई। और वो जो बड़ा है, जो ज्यादा सिका है, उसकी बात को हमने ले लिया। अब आपका ये सवाल था कि क्या ये हसन लिगैरी ही हो सकती है, जो जो शाज हदीस है। बात ये है कि ये जो शाज हदीस है, अगर इसके मुकाबले में और बहुत ज्यादा और हदीस आ जाती है, जो सही हदीस कोई मौजूद है, तो अब तो इसका शाज जो है ना, उसका जो वीकनेस है उसके अंदर, वो अगर ज्यादा शदीद नहीं है, तो वो तो फिर दो तीन और कॉल अगर मिल गए तो इसका तो शाज रहेगा ही नहीं फिर, इसलिए कि इसके मुकाबले में और आ जाती है बड़ी चीज, तो फिर वो शाज हदीस नहीं कहलाएगी, फिर वो हसन ली गैरी ही कहलाएगी, ठीक है, फिर वो हसन ली गैरी ही कहलाएगी, फिर वो शाज नहीं, उसको हम नहीं कहेंगे इसमें शुजूज है वो, हमने, हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो शाज हदीस है ना वो काबिल अमल नहीं होती, वो इसमें शुजूज आ गया ना, देखिए एक तरह की वीकनेस ही हो गई ना। अब खुद ही अभी आपने बताया कि आप टीचर की बात को ले लेंगे, स्टूडेंट की को छोड़ देंगे, राइट, उसके ऊपर तो अमल नहीं करेंगे। सो अंटिल छोटी को ही डिडंट गेट सपोर्ट टिल द, हाँ जी जी जी, अब जब सपोर्ट नहीं मिली वो तो खैर शाज ही है ना, लेकिन जब उसको अगर सपोर्ट मिल गई तो फिर हम उसको शाज कहेंगे ही नहीं। दूसरे राबी ग्रेट दर्जे का आकर छोटे की बात को, हाँ जी जी, अगर सपोर्ट हो गई ना, उसको सपोर्ट मिल गई, दो तीन और अहादीस मिल गई जो इसकी बात को सपोर्ट कर रही थी, तो फिर तो इसका शजूस खत्म हो गया। फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये सही ली गई, वो हसन ली गई ही बन जाएगी, नहीं फिर शाज हदीस नहीं कहलाएगी वो। शाज हदीस सिर्फ होगी जब तक उसको कोई मिला नहीं है जो उसकी बात को सपोर्ट कर रहा हो। हसन ली गई वही होती ना जब जईफ अहादीस मिल जाती है, जब कुछ जईफ अहादीस मिल जाती है, उनका जोफ बहुत ज्यादा ना हो, ये ना हो मौजूद हदीस हो, जब वो नहीं जी, तो फिर उसके बाद जब वो बहुत सारी मिल जाती हैं तो फिर वो हसन ली गई बनती है ना, तो फिर ये हसन ली गई बन जाएगी। हाँ रावी सेइंग द ट्रूथ, बिल्कुल, और भी रावी आ गए। पहले हमने सोचा कि इसमें शुजूज है, लेकिन जब इसको सपोर्ट मिल गई और रावियों से और बहुत सारे अहदीस ऐसी मिल गई, तो फिर ये हसन ली गई बन गई, फिर उसको शाज नहीं कहेंगे। शाज हदीस कौन सी होती है पता है ना आपको? जब उसे बड़ा कह दे, या फिर उसके इक्वल लेवल के भी लोग कह सकते हैं, इक्वल लेवल के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो फिर भी वो शाज ही बन जाती है। ठीक है, ज्यादा सिका रावी अगर मुखालफत करता है, या जो दरमियाने दर्जे के रावी है वो सब मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं हसन ली जाती ही नहीं, उनमें उस कैटेगरी में जा सकती है अगर वो हाफजे की कमजोरी की वजह से था। वो बाद में हम देखेंगे कि ये किस में जा सकती, इसमें भी जा सकती, हसन ली गरी में भी उसकी है जी, सही गरी में भी जा सकती है, वो फिर बाद में उसकी इवेल्युएशन होगी। ठीक है, इनमें इन कैटेगरीज में से किसी में जा सकती, मगर वो शाज में नहीं रहेगी, फिर वो इस शाज की कैटेगरी से निकल के फिर इन में से किसी में फॉल करेगी। ठीक है, सो इफ बड़े ने कहा और इक्वल ने कहा, इस नहीं इसकी बात, इक्वल ने कहा मतलब क्या, इक्वल ने भी अगर कह दिया है, अगर बहुत सारे उसको सपोर्ट मिल गए इक्वल के, तो फिर वो शाज नहीं रहेगी। ठीक है, अगर कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं बहुत सारे इक्वल्स भी या बड़ा, तो फिर वो शाज हो जाएंगे। एनी होती, हाँ जी, इनमें से किसी में भी फॉल कर सकती, वो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसके हालात हैं, क्या रावी का हफ्जा कमजोर था, क्या उसको इस तरह की और हसन अहादीस मिल गई, क्या और ज़ईफ अहादीस आ रही हैं, कि क्या किस जगह खड़ी है वो हदीस जी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये आप लोगों को मेरे ख्याल में अभी तक अच्छी तरह रट तो गया होगा, सही ली जाती ही क्या है, हसन ली जाती ही क्या है, और सही ली गईरी ही क्या है, हसन ली गईरी ही क्या है, ये सबको याद हो गया ना। अच्छा अभी भी रिपीट करने की जरूरत है, मैंने वैसे बहुत दफा रिपीट किया इसको, चले फिर इंशाल्लाह ताला कर लेते हैं दोबारा, इसी के ऊपर चलते हैं। अच्छा सबसे, जैसे अभी हमारी बात हो गई, सबसे यानी स्ट्रॉन्ग इनमें सही ली जाती ही है, उसकी सनद भी सारी कनेक्टेड है, उसके रावी भी शुरू से आखिर तक आदिल हैं, साबित हैं, अब तो फिर ये मौतर क्यों नहीं हो गई? मुझे नहीं पता कि बिकॉज इन अदर्स देर शुड बी नो शास, नहीं मुतवातिर क्यों नहीं हो गई, इतनी तो बेहतरीन इसके अंदर क्वालिटीज हैं। बिल्कुल शाबाश, यानी हो सकता है इसमें किसी तबके में 10 से कम हो रावी, कि ना एक मुतवातिर की एक कंडीशंस हैं, जब तक वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस कोई मीट नहीं करता उस वक्त तक वो उसमें वो नहीं मुतवातिर हो सकती। ठीक है, अब ये स्ट्रिक्ट उसकी मुतवातिर की कंडीशन से नीचे चली गई, अब ये क्या है, हालांकि इसकी चेन भी कनेक्टेड है, इसमें भी रावी जो सारे उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, वो अमानतदार भी हैं, इसमें कोई किसी किस्म का कोई
कोई शजूज भी नहीं है, किसी बड़े ने नहीं आके कहा कि भाई ये इसकी बात गलत है या किसी बड़े की बात के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हो इसकी बात, ऐसा भी नहीं, कोई इल्लत भी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है इसके अंदर, स्टिल वो सही निजाती ही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सही निजाती ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, आपको पता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है। चलिए अल्लाह ताला आपको और बड़ी क्लासेस का स्टूडेंट बना दे हदीस में इंशाल्लाह। अच्छा, हसन ले जाती ही में भी सारी ये कंडीशंस जो सही ले जाती ही में है वो सब फुलफिल होती हैं, सिवाय इसके कि एक रावी का हाफिजा कुछ कमजोर है, ठीक है, एक रावी का हाफिजा कुछ कमजोर है। अब क्या इस हदीस को हम लेंगे या नहीं लेंगे, हसन ले जाती ही को, रावी का हाफिजा कमजोर है ये याद रखें जी, क्यों लेंगे रावी का हाफिजा कमजोर है क्यों लेंगे जी, मकबूल हदीस में से, शाबाश मकबूल हदीस में से, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका ज्यादा कुछ कोई हाफिजा ऐसा नहीं है कमजोर के जिसमें कोई बहुत कोई बातें ऐसी भूल रहा हो कि कुछ का कुछ बोल रहा हो या कुछ है, खफीफ सा कुछ ऐसा कमी आई होगी। तो सही ली गैरी ही में फिर क्या होता, उसका सही में जाती ही से कुछ ताल्लुक है, सही ली गैरी ही में क्या होता है, मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ, गैर गैर जब ये वर्ड आ जाएगा तो सम जी इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड होगी। अब क्या इंटरवेंशन हुई, इसका हाफिजा कमजोर था तो क्या हुआ फिर, हसन थी हालांकि वो हदीस, हसन भी अच्छी खासी होती है तो दूसरी हसन हदीस आ जाती है उसकी सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल हसन हदीस आ जाती तो फिर ये सहेली गैरी बन जाती, ठीक है। एक और हसन हदीस इसके साथ मिल गई इसको सपोर्ट करने के लिए तो फिर ये सही ली गैरी ही बन गई। अब हसन ली गैरी ही क्या होगी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ज़ईफ अहदीस हैं उनकी बहुत सारी चेन से, बहुत सारी ज़ईफ अहदीस हैं, मगर जाहिर है ज़ौफ उनका ऐसा नहीं है खुद अल्लाह खासा के कोई मौजू हदीस हो, हाँ ज़ईफ हदीस है मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ज़ईफ हदीस के हमने बहुत सारे रीजंस देखे हैं ना, बहुत सारे रीजंस बेशुमार हो सकते हैं, तो लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी वजह ना हो कि मसलन वो बहुत ही झूठा है, कोई बहुत फासिक फाजिर बिद्दती इस तरह का कोई है, इस ऐसी नहीं वजह होनी चाहिए ज़ौफ की भी, तो तब उसको कोई और ज़ईफ हदीस मिल जाती हैं और सनदों से और ज़ईफा हदीस मिल जाती हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, फिर वो हसन ली गई है, मुतवातिर तो नहीं हो जाएगी। नहीं मुतवातिर फिर भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सारी ज़ईफ ही है ना, तो हसन ली गई ही हो जाएगी। अब इस पे अमल करेंगे फिर आप, हसन ली गई रही ज़ईफ हदीस है उसके बहुत सारे, अब फिर उसको ज़ईफ नहीं ना करेंगे, फिर हमने उसको कह दिया हसन ली गई रही, ठीक है, फिर इसको आपने ज़ईफ नहीं अब दोबारा कहना जी, हाँ जी ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी और क्या है आपका ज़ईफ हदीस के बारे में, अच्छा ज़ईफ हदीस के बारे में भी आ जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़ईफ हदीस के बारे में क्या हुक्म है जी, और सबसे बड़ी बात है ना मकबूल की किस्म, जब आपने मकबूल की किस्म आपको पता चल गई तो फिर आंखें बंद करके आपने बस उसके ऊपर अमल कर लेना, मकबूल इसीलिए तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया। अच्छा जी ज़ईफ हदीस जो है इसके बारे में क्या हुक्म है, अच्छा वी कांट एक्ट अपॉन इट, ज़ईफ पर अमल नहीं करना, ठीक है, और बयान कर सकते हैं इसको, अच्छा बयान कोई शर्त के साथ बयान कर सकते हैं या ऐसे ही कोई भी बयान करते, बयान यस लेकिन कोई शर्त होनी चाहिए ना, हाँ जी क्लैरिफाई करना है और क्या बात और शरायत क्या है, आ, जी इंस्पायर करने के लिए, बिल्कुल तरगीब देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हो सकती है। और क्या शर्त है? हलाल हराम से मुतालिक ना हो, अकीदा इसके अंदर ना हो, कि अकीदा ही जईफ हदीसों से लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा। जोफ बताना जरूरी है, बिल्कुल शाबाश। और कंडीशन जोफ शदीद ना हो, कंडीशन जोफ शदीद ना हो मतलब, यानी उसका मतलब क्या है, यानी मौजू हदीस ना हो कि बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड हदीस है। तो अब आप फैब्रिकेटेड हदीस तो हदीस ही नहीं है ना, ठीक है, वो तो किसी ने घड़ी भी है। वो मौजू जो हदीस होती है वो कौन सी होती है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं होती, वो किसी बंदे की बात होती है। उसने झूठ बोला, घड़ लिया ना, घड़ना क्या होता है, खुद ही बना लिया जी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है। अच्छा, तो क्या सारी अहादीस जो ज़ईफ अहादीस है वो मौजू होती जी? टोटल लाइज है, शाबाश। नहीं, बिल्कुल को भी हो भी सकता है कि उसके अंदर किसी का कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, और वो रीजंस क्या हो सकते हैं, किसी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कोई रीजंस आप बताएंगे कि कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई हदीस ज़ईफ हो जाए? डिस्कनेक्टेड चेन हो सकती है, हाँ बिल्कुल। अब वो हो सकता है कि वो सही ही हो हदीस, मतलब उसमें कोई ऐसी वो खामी और कोई नहीं है, मगर वो चेन चूंकि डिस्कनेक्ट हो गई इस वजह से उसकी सेहत पे असर पड़ा, ठीक है। एक दफा किसी ने मुझे कहा, यानी देखिए इसीलिए मैं आपको कहती हूँ इतना सा इल्म तो सबके पास होना चाहिए। किसी ने मुझे कहा देखिए कितनी बुरी बात है, कोई कोई कह रहा था कि ज़ईफ हदीस है, देखिए हदीस को भी कोई आप ज़ईफ कह सकते हैं? मतलब उन्होंने बहुत माइंड किया कि आप हदीस को कैसे कह सकते हैं कि वो ज़ईफ है। ज़ईफ उनको उनके यानी उनके जहन में यही था कि बहुत उसको वीक, बुरा, बूढ़ा और इस तरह कह दिया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम इतने ज्यादा हालत में है ना हदीस के मौजू से, तो इसलिए ही फिर हम गलतियां करते हैं, क्योंकि यहीं से लोग आके फिर अल्लाह ताला माफ करे कि मिस गाइड करते हैं लोगों को, और बिद्दतें यहीं से रिवाज पकड़ती हैं। क्योंकि बिद्दत को फरोग देने के लिए वो क्या लेकर आते हैं, एक कोई मनगढ़ंत कोई मौजू हदीस ले आते हैं और वो कहते हैं आके ये, या फिर ऐसी कोई ज़ईफ हदीस ले आते हैं। और देखें अभी हमने पढ़ा है अकीदे से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हलाल हराम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उसका ज़ौफ भी इतना शदीद ना हो इस तरह से। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक नई चीज एक नई रसम बना लें सिर्फ एक ज़ईफ हदीस की बेस के ऊपर, दीन में एडिशंस करना शुरू करते हैं। तो अच्छा, अब ये बताएं आपने, हाँ आपने बताया कि रावी नॉट ऑनेस्ट, दयानतदारी चेन उसकी डिस्कनेक्ट हो सकती है, बिल्कुल शाबाश। उसका हाफजा कमजोर हो सकता है, दीनदारी में कमी हो सकती है जी, वो बिद्दती हो सकता है, वो झूठा हो सकता है, वो फासिक हो सकता है, कोई भी इनमें से बात हो सकती है। यानी अब देखिए ना, एक चेन डिस्कनेक्ट होना ज्यादा बड़ी बात है या किसी का झूठा होना ज्यादा बड़ी बात है, बताएं कौन सी ज्यादा बड़ी बात है? झूठा होना, शाबाश। अब देखें आपके ज़ईफ हदीस के असबाब में कितनी वेरिएशन हो सकती है। एक बहुत हाई लेवल का सीरियस उसके ऊपर इल्जाम भी हो सकता है हदीस के ऊपर कि ये किसी झूठे रावी ने बयान किया है, और कम एलिगेशन भी, कम उसका एक मसला भी हो सकता है, उसका प्रॉब्लम एक कम भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सनद ही डिस्कनेक्टेड है, या कम ये हो सकता है कि हाफजा कमजोर है रावी का। लेकिन एक है बिल्कुल बिद्दती होना, एक है बिल्कुल झूठा होना, एक है फासिक होना, वो फिर बहुत सीरियस किस्म के हो सकते हैं। तो ज़ौफ में भी इसका मतलब है लेवल्स है, ठीक है, ज़ौफ में भी क्या है, लेवल्स है सब, सही, सबको ये बात समझ आती है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि रावी की हालत का मजहूल हो जाना। मजहूल कौन सी हालत होती है? ये भी एक ज़ौफ की यानी सबब हो सकता है। अननोन है, शाबाश, अननोन है रावी जो है। अब जो अननोन रावी, देखिए हालांकि ये कोई वो हो सकता है, वो कोई बहुत सही रावी हो, उसका हाफजा भी बहुत अच्छा है, उसकी दयानतदारी में भी कोई शक नहीं, मगर चूंकि उसके बारे में पता नहीं है ना, तो इसलिए उस हदीस को भी ज़ईफ कह देते हैं। अब ये भी एक कम दर्जे का ज़ौफ हो गया ना, एक बहुत सीरियस दर्जे का भी ज़ौफ हो सकता है, एक कम दर्जे का भी हो सकता है। डिस्कनेक्टेड सनद में भी आपको ये याद रखना कि कहीं बीच में से जाकर लिंक मिसिंग हो सकता है, कहीं पे भी बीच में से, ठीक है। तो उस किस्म की हम फिर हर हदीस को ही ज़ईफ ही कह देते हैं, हालांकि हो सकता है कि वो बहुत ही बड़े किसी रावी बीच में हो, लेकिन बस सनद डिस्कनेक्टेड है। तो ये देखिए मुहद्दिसीन ने ये डिफरेंट एक रूल्स बना दिए ना, कंडीशंस बना दी हैं किसी भी हदीस को लेने के लिए, ताकि हमारे लिए गलती का इम्कान ना हो। अब देखिए हर चीज सामने है आपकी, कौन सी ज़ईफ है कौन सी, यार आपको ये भी पता चल गया कि ज़ईफ में ज़ौफ क्या होता है और वो किस वक्त बयान की जा सकती है, कब वो नहीं बयान की जा सकती। ये सब चीजें जब सामने होती हैं तो बहुत आसानी हो जाती है आपके सामने कोई हदीस रखे तो, ठीक है। जब बहुत शदीद ज़ौफ हो तो फिर तो नहीं लेनी, जाहिर है मसलन मौजू है या फिर वो झूठा है कोई ऐसा रावी उसके अंदर, या उसकी दयानतदारी में ही शक है तो फिर तो नहीं लेंगे ना, या फिर फासिक था। बहुत बड़ा एहसान है मुहद्दिसीन का हम पे। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि निस्बत के लिहाज से, निस्बत इसके लिहाज से अहादीस की जो अकसाम है वो कौन सी है, यानी बयान करने वाले की किसकी तरफ, यानी आप निस्बत कर रहे हैं ये बात किसकी तरफ जा रही है। जी चार है, हदीस कुदसी कौन सी है, अल्लाह ताला की तरफ निस्बत है। अच्छा उस हदीस को क्या कहते हैं जिसके अंदर ताबई कह रहे हूं कि सहाबी का ये कॉल है, उसको क्या कहते हैं मौकूफ। अच्छा और उसको क्या कहते हैं जिसमें तबा ताबई कहे कि फलां सहाबी ने, फलां ताबई ने ये बात फरमाई, मखदू। अच्छा अगर तबा ताबई ये कहे कि फलां सहाबी ने ये बात की, तबा ताबई कहे कि फलां सहाबी ने ये बात की, ज़ईफ हदीस, ज़ईफ, हाँ जी, यानी जो वो लिंक टूट गया ना, लिंक नहीं है ना बीच में। तो जो हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी हैं, मुरसल वगैरह पे हम नहीं गए अभी, आपने जो अभी कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें क्या होगी, मौकूफ नहीं होगी। मौकूफ में तो ताबी ने कहा है कि मैंने सहाबी से सुना। तबा ताबई अगर कह रहा है, तबा ताबई, जी तबा ताबई कह रहा है कि मैंने सहाबी से यह बात सुनी, तो ज़ईफ है, झूठ है, या कोई बात, या फलां सहाबी का ये बात है, तो वो लिंक बीच में से मिसिंग हो गया। जी ये कंक्रीट सहाबी, बिल्कुल, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस भी जब हो जाती हैं तो कंफ्यूजन एक ये हो जाती है कि पता नहीं आप लोग शायद मिक्सअप कर देते हैं या क्या बात होती है। हमने ज़ईफ अभी पढ़ी ना, अभी आप ज़ईफ तक रहने दें, ठीक है। चले अच्छा जी, ये हदीस कुदसी, ये बताएं कि हदीस कुदसी भी क्या हमेशा सही होगी, या वो भी हाद में भी सही हो सकती है, मुतवातर में से भी हो सकती है, ज़ईफ में से भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल, इसमें भी तहकीक करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करके कोई बात तो फिर हम कह दें कि नहीं ये तो सही है, ठीक है। उसमें क्योंकि किसी से पहुंची है तो उसकी तहकीक करनी जरूरी है ना। अच्छा जी अब आए यहाँ पे आए पेज नंबर 31, 30, सारी ऊपर दी गई हैं। ये क्या है जो 7 सही 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 लिखा हुआ है, ये क्या है, किसकी अकसाम है ये? ये किसकी अकसाम है ये जो 7 दी गई है, किसी को नहीं पता। सही लिजाती ही की अकसाम है, ठीक है, सही लिजाती ही की अकसाम है ये सारी। तो आप इनसे गो थ्रू करिएगा, इसका मतलब सही लिजाती ही के कितने दर्जे हैं, 7 हैं, जो ये सारी है ना ये सभी ऑथेंटिक अहादीस है। और इनसे आप गो थ्रू करें कि ये क्या है, क्या इनके वो है। अच्छा शर्त क्या होती है, शर्त जो आए ये लिखा हुआ कि दोनों की शर्त पर है, शर्त क्या चीज होती है? नो 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 नो, बुक्स नेम्स नहीं है ये बुक नेम नहीं है, बता रहे हैं वो कि सही की किस्में कौन सी हैं। देखिए ना पीछे, नहीं आप देख रहे हैं, सही की किस्में जिक्र करते हुए बयान की है। सही ये मैं सिर्फ आपको खुद से बता रही हूँ ये कि ये सही लिजाती ही की अकसाम है। ये सही लिजाती ही की एक किस्म वो है जो बुखारी और मुस्लिम ने, पता है ना सही लिजाती है जी। शर्त क्या होती है? देखिए आप इधर स्केल, जो कंडीशंस उन्होंने लगाई, बिल्कुल जो कंडीशंस उन्होंने लगाई कि राइटिंग हदीस की, कि मैंने ये हदीस लेनी है कि नहीं, उसके लिए उन्होंने कोई कंडीशंस लगाई। मसलन आपके बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, ये भी तो एक कंडीशन है ना, रावी को बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है ना। अच्छा जी, जिसने अगले से ली है हदीस तो वो उसकी बुखारी की तो बहुत स्ट्रिक्ट है कंडीशंस, बहुत स्ट्रिक्ट है। अब ये नहीं कि उनके अंदर कोई मसला था हदीस में, लेकिन वो उनकी जब जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस कह लें या उनकी कंडीशंस को मीट नहीं करती कोई हदीस, तो वो फिर नहीं लेते थे उसको। मसलन वो उनकी एक कंडीशन ये थी कि जिससे रावी ने चेन में, एक रावी ने जब दूसरे से ली है हदीस, तो वो ये जरूरी है तो ये कहे कि मैंने अपने उस्ताद से ली थी तो मैं उनसे मिला था, मुलाकात वो शर्त कहते हैं, सबूत लिखा उन्होंने शर्त लगाई भी। बाकी होंगी ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है, मुस्लिम की ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। हाँ जी, दे बोथ एग्री ऑन सेपरेट कंडीशंस, बिल्कुल नहीं, शर्त वो नहीं है कि दे एग्रीड अपॉन, हर एक ने जो अपने अपने लिए, मसलन मैं, अच्छा इस तरह आप समझे, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए मसलन है कि कोई रूल्स या कंडीशंस रखती हूँ कि आप हदीस की क्लास में तब आ सकते हैं जब आपने 20 बारे कुराने पाक के किए, ठीक है। अब ये एक मेरी शर्त है। अब दूसरा कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि नहीं, पूरा कोर्स खत्म किया तब आप हदीस क्लास ले सकते हैं। तीसरा एक और इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि नहीं, हदीस भी आपने पढ़ी हो, फिर उलूमुल कुरान भी पढ़ा हो, फिर उलूमुल हदीस भी पढ़े हो, तो तब आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो आप देखे ना, तीनों की डिफरेंट एक शर्तें हो गई ना, कंडीशंस हो गई। मैंने आपके इस क्लास में आने के लिए एक कंडीशन रखी, उन्होंने कोई और रखी, तीसरे की और स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। तो इस तरह से बुखारी ने कहा कि मैं अपनी बुक में कौन सी हदीस लूंगा, ये तो नहीं है कि जो भी सुना रहा था हदीस उन्होंने लेके तो लिखना शुरू कर दिया। समझ आई बात? उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी इसके लिए कि जो हदीस उस पे पूरी उतरेगी वो उसको अपनी बुक में लिखेंगे। क्लियर और नॉट? सही तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपनी भी कुछ कंडीशंस रखी ना। सही तो है ही, जाहिर है ये तो सहा सिकता है, उनमें सारों में सही है, लेकिन डिफरेंट क्यों है सबकी हदीस? सारी फिर बुखारी ही होती। देखिए ना, तिर्मिजी में और अहादीस हैं, नसाई में और अहादीस हैं, अबू दाऊद में और अहादीस हैं, क्यों अलग अलग हैं हादीस? इसीलिए है, सारों ने सही लिखी है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने कोई जयीफ हदीस लिखी भी है, लेकिन शर्तें सबकी डिफरेंट है ना, कंडीशन सबकी डिफरेंट है, ठीक है जी। जब वो, अब तिर्मिजी ने मसलन अपनी शर्त के ऊपर अपनी किताब लिखी, तो उनकी कंडीशंस को जो मीट करेगा जी, क्राइटेरिया सबका डिफरेंट है, उनकी क्राइटेरिया पे उनकी जो कंडीशंस है 1 2 3 4 5, ये सारी कंडीशंस जो मीट करेगा वो उनकी बुक में हदीस आ सकती है, जो उनकी कंडीशन नहीं मीट करती वो नहीं आएगी, ठीक है। तो बुखारी की रिस्ट्रिक्शंस या क्राइटेरिया या कंडीशन जो भी आप कह लें, वो एक डिफरेंट है, मुस्लिम का डिफरेंट है, तिर्मिजी का डिफरेंट है, बुखारी की जो है ना वो ऐसी स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने कहा कि मुलाकात का जब तक ना पता चले कि कहाँ पे मुलाकात हुई थी, कैसे हुई थी, कि उस रावी की मैंने हदीस नहीं लेनी। तो मुस्लिम ने कहा कि नहीं, देखे अगर वो एक ही जमाने में एक जगह रहते थे तो वो जब कह रहा है, वो आदिल भी है, वो जाबित भी है, उसका हाफजा भी ठीक है, जब वो कह रहा है कि भाई मैंने सुनी तो बस ठीक है, सुनी है तो फिर सुनी होगी ना, तो लेकिन वो कहते नहीं, पहले मुझे पता चले कि मुलाकात हुई, कहां हुई, कब हुई, क्या हुई, ये सब चीज पता होगी। तो फिर उसकी रिवायत को मैं उसकी तरफ से ली गई हदीस मेरी किताब में जगह लेगी, ठीक है जी। इसीलिए तो, लेकिन मुस्लिम की भी बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसी बात नहीं है। کہ وہ اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ملاقات ہوئی ہی ہے, لیکن مطلب یہ تو میں نے آپ کو ایک کنڈیشن جسٹ بتائی ہے, بہت ساری اور کنڈیشنز بھی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کئی صحیح احادیث ہیں. اب یہ نہیں کہ ترمذی میں اگر کوئی حدیث آ گئی نہیں وہ, یا کوئی دوسرے آئمہ کے نزدیک صحیح ہے لیکن بخاری اور مسلم کی شرط پہ نہیں وہ پوری اترتی, تو انہوں نے نہیں اپنی کتاب میں لکھی لیکن وہ صحیح ہے حدیث وہ بھی. اب ہم کبھی کبھی یہ سوچ رہے تھے نا نہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے بس وہ تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. اور بھائی وہ حدیث ان کی بک میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی شرط پہ نہیں پوری اتری تھی, ان کی کنڈیشنز نہیں اس نے میٹ کی تھی, ادروائز وہ صحیح ہے, صحیح کی کنڈیشن میٹ کرتی ہے وہ. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ ہاں جی, انہوں نے وہ اینیمل ریسیو کرا تھا تو اس لیے نہیں لی تھی. بالکل جی, تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے بات. اچھا جی, اور کیا چیز تھی؟ یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں کہ زاد المسلم ایک اور کتاب ہے جو لولو المرجان کی ہی طرح, جس کے اندر بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث ہے, لیکن اس میں کانا سے جو شروع ہوں یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخصیت کے بارے میں, آپ کی کوئی صفات کے بارے میں بتایا گیا ہو, یا ایسی احادیث ہے جس میں لفظ نہیں سے شروع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نیچے بھی دیکھ لیجیے گا مرفوع اور اس کے بارے میں. تو یہ تقریباً آپ کا ایک سمری سی ہو گئی ہم نے کر لی ہے جو آ سکتا ہے اس کے اندر. اب انہیں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ مسلم اور اینی تھنگ ایلس دین کین یو بلیو آن دوز میسج فیل. ہاں اگر مسلم کی حدیث ہے تو پھر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر کوئی بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے وہ مسلم کی حدیث نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی حدیث لکھا ہے کہ مسلم کیا تو پھر اس پہ بلیو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ معاف کریے, تو پھر جھوٹ باندھنا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے اور وہ نہیں ہے مسلم کی, جسٹ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون چیک کرے گا جا کے, اور آپ نے نیچے لکھ دیا, تو وہ پھر جھوٹ باندھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نہیں نہیں, نمبر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, نمبر پہ نہ آپ جائیں, کیونکہ دیکھیں اب میرے پاس بخاری ہے اس کے اندر نمبر ڈفرینٹ ہے, دوسرے جو ایڈیشنز ہیں ان میں ڈفرینٹ ہیں, وہ نمبر پہ بالکل نہ آئے. ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیپٹر میں ہے, اس چیپٹر میں چیک کر لیں, ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ یہاں تک آپ کا ہو گیا, آج تو سارا ٹائم آپ کا ریویو کے اندر ہی ہو گیا. اب اس کے بعد بھی پھر کوئی اگر سمجھتا ہے کہ ابھی تک بھی نہیں آیا تو تھوڑا سا اور پڑھیں, انشاءاللہ آ جائے گا آپ لوگوں کو. ہاں جی, اگر وہ کہتا ہے 2005 نمبر حدیث ہے اور وہاں پہ 2005 پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے, اس لیے کہ وہ میری بک میں 3000 نمبر پہ ہو سکتی ہے. نمبرنگ آگے پیچھے ہے بکس کے اندر, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا. اب آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کی مزید تیاری کریں. آج آپ لوگوں کا یہ ریویو سیشن ہی تھا, آپ لوگوں کو کافی ٹائم بھی مل رہا ہے الحمدللہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے. آج نیا سبق کوئی نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو ہم یہی ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹیسٹ کو تیار کریں. 11:45 پہ ایسٹرن ٹائم کے مطابق آپ لوگ آ جائیے گا کلاس میں. اور جو لوگ اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں اور ہمیں باہر سے کہیں سے ریکارڈنگ سنتے ہیں تو وہ بھی نوٹ کر لیں کہ ایک گھنٹہ ہمارا پیچھے ہو گیا, تو اب جس ٹائم پہ آپ پہلے آتے تھے اس سے ایک گھنٹہ پہلے پلیز اس میں آئیے گا ٹیسٹ ٹائم پہ. اور آپ کو اس ٹائم کے اندر ہی ٹیسٹ دینا ہے, پلیز کوئی بھی اس کے بعد ٹیسٹ نہیں سبمٹ کرے گا, جو کرے گا ہم اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. وہ ٹائم آپ کو دیا جائے گا, 25-30 کوسچنز ہوں گے, 40 منٹس آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس دفعہ میں دوں گی, آپ لوگ اس ٹائم کے اندر اندر ٹیسٹ کریں گے. میں کوشش کروں گی کہ ٹیسٹ کے بعد ان لوگوں کے نام اناؤنس کر دیے جائیں جن کا ٹیسٹ ہمیں مل گیا ہے, اور جن کا نہیں ملا ہوگا پھر وہ ابھی آپ لوگ نہیں بکس کھولیں گے جب تک آپ کا ٹیسٹ ہم نہیں اناؤنس کر دیں کہ ہمیں مل گیا. رائٹ آفٹر دا ٹیسٹ, ہو سکتا ہے آپ نے کچھ دیر میں کیا ہو. نہیں, اگر آپ کا ای میل ایڈریس بھی رانگ ہے تو میرے پاس تو آ جانا چاہیے نا, میرے پاس تو سب کا ریزلٹ ہے, اس میں آپ کا نام نہیں ہے, سبمٹ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله تعالى نيكسٹ منڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ